शांति। पवित्रता के सागर की आप सभी संतानें, विशेष स्टैनमोर लंदन के भाई बहने, यूके और अन्य स्थानों से जुड़े हुए सभी ब्राह्मण कुलभूषणों का आज के संध्याकालीन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। पवित्रता के लिए दूसरा सत्र, पहला सत्र हमने किया था जिसमें बहुत सारे आपके प्रश्न थे और इस सत्र में भी बहुत सारे प्रश्न आपने भेजे हैं। भारतवर्ष के शास्त्रों और बातों से जो भाई बहने परिचित हैं वो जानते हैं कि तुलसीदास जी, उनकी पत्नी रत्नावली बहुत ही खूबसूरत हैं और तुलसीदास जी उन पे बहुत आसक्त थे। एक बार वो अपने भाई के साथ बिना बताए ही तुलसीदास जी को चली गई अपने मायके। अब ये इतने आसक्त थे कि आंधी तूफान से भरे हुए रात में ही ये चल पड़े सब चीजों का सामना करते हुए। देखा कि नदी में बहुत बाढ़ है, फिर भी उन्होंने सोचा कि कोई लकड़ी मिल जाए ताकि मैं पार कर जाऊं। एक लाश बही जा रही थी, उसे लकड़ी समझ के पार कर गए। घर पहुंचे, आधी रात थी, सब दरवाजे बंद थे, आवाज सुनाई नहीं दे रही थी अंदर। तो अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचने के लिए उन्होंने, कहा जाता है कि एक सर्प लटक रहा था, उसे ही रस्सी समझ के उसके कमरे में पहुंच गए। जब पत्नी ने देखा कि इस हालत में ये पहुंच गए हैं, तब उन्होंने कहा कि मेरी इस हाड़ मांस के विनाशी देह में जितने आप आसक्त हैं, उतनी ही आसक्ति, उतना ही प्रेम यदि प्रभु से होता तो आपकी नैया तो पार हो जाते। और कहते हैं तब ज्ञान चक्षु खुला और उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी, जो आज भारतवर्ष में ही नहीं लेकिन विश्व भर में जहां जहां हिंदू हैं उसका अध्ययन करते हैं, एक सुंदर धर्म शास्त्र है। वहीं दूसरी ओर ये भी देखा जाता है कि जहां रत्नावली ने तुलसीदास जी को ईश्वर की ओर प्रवृत्त किया, साधना की ओर प्रवृत्त किया, वहीं एक लंबे काल के साधक विश्वामित्र जी की भी बात आती है कि उन्होंने गहन तप किया, साधना की, बहुत विद्वान थे, लेकिन मेनका ने अपनी सुंदरता से उनके ब्रह्मचर्य व्रत को, उनके तप को भंग किया। तो दोनों ही बातें हम सुनते हैं और जब ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो लगातार बाबा रत्नावली की तरह हमें प्रवृत्त करते रहते हैं कि नहीं, काम क्रोध को छोड़ो, आगे बढ़ो, ईश्वर की ओर बढ़ो। और वहीं हम ये देखते हैं कि मेनका की तरह कई बार माया हमारी परीक्षाएं भी लेती रहती है क्योंकि ये मार्ग लंबा है। कैसे हम अपनी पवित्रता को सुदृढ़ करें, श्रेष्ठ इस मार्ग पर आगे बढ़ें ताकि इसका हम आनंद भी ले सकें और साथ ही साथ सर्व ईश्वरीय खजानों से संपन्न हो सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां पवित्रता है वहीं परमात्मा है, जहां पवित्रता है वहीं सुख शांति समृद्धि है। तो इस बाबत ही ये सुंदर चर्चा रखी गई है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय सूर्य भाई जी, जो 1964 से लेकर इस पवित्रता के पथ पर, ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं और लाखों लाखों लोगों को आपने पवित्रता के लिए प्रेरित किया है, इस श्रेष्ठ मार्ग पर आपने उनका मार्गदर्शन किया है। आज भी भ्राता जी हमारे बीच हैं, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा और उनके प्रश्नों को भी, उनके उत्तरों को हम सुनेंगे जो प्रश्न आपने भेजे हैं। लेकिन उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि भ्राता जी इस पवित्रता पर हमें सुंदर प्रकाश प्रदान करें, पश्चात हम आपके प्रश्नों को लेकर भ्राता जी की ओर बढ़ेंगे। आदरणीय सूर्य भाई जी,
ओम शांति। पवित्रता परमात्म जायदाद है, बहुत सुंदर ये भगवान के शब्द हैं। उसने हमारी सोई हुई प्योरिटी को जगाया है और फिर से संपूर्ण पावन बनने का आदेश दिया है। केवल आदेश नहीं दिया, उसकी एक सुंदर विधि बता दी, एक गाइडलाइन प्रस्तुत कर दी हमारे लिए कि हमें पहले ब्रह्मचर्य अपनाना है, फिर देह के आकर्षणों से ऊपर उठना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है, मन बुद्धि पर अपना अधिकार करना है, और फिर जो हमारे अंदर सुख संवृत्तियां रह जाती हैं, वासनाएं रह जाती हैं, उन पे विजय प्राप्त करना है, और फिर जो उससे जुड़े हुए, वासनाओं से जुड़े हुए और विकार हैं, ईर्ष्या द्वेष, तेरा मेरा, क्रोध, बहुत सारी इच्छाएं, अभिमान, इन सब पर भी विजय प्राप्त करके चित्त को निर्मल करना है। स्वप्न भी हमारे बिल्कुल क्लीन हो जाएं, काम वासना की सूक्ष्म इच्छाएं भी हमारी समाप्त हो जाएं, इसके लिए हमें ईश्वरीय रस लेने होते हैं। भगवान से इतना रस मिल जाए कि ये दैहिक रस समय नेग्लिजिबल लगने लगे, बिल्कुल देयर नथिंग, ऐसा हमें करना है। इसलिए कहा कि ये लंबी यात्रा है, इस पर हमें निराश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जितना जितना हमारा योग बल बढ़ेगा, हम परमात्म सुखों को अनुभव करेंगे, सर्वशक्तिमान से शक्तियां मिलेंगी और देवान से हम न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। और एक चीज और, अपने पवित्र देव स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, आत्मा के अनादि स्वरूप परम पवित्र की स्मृति में रहेंगे, प्योरिटी नेचुरल होती जाएगी, क्योंकि हमें प्योरिटी को नेचुरल बनाना, जबरदस्ती नहीं, सप्रेस करके नहीं अपनी फीलिंग्स को, लेकिन बहुत नेचुरल, जैसे हमारा नेचुरल संस्कार ही कंप्लीटली प्योर आत्मा हूं ये है। तो हम एक साधना के मार्ग पर हैं, हमें अपने स्वप्नों को भी पूरा क्लीन कर देना है। और स्वप्न क्या है, जो इनकम्प्लीट डिजायर्स हैं मनुष्य के मन में, वो मनुष्य स्वप्नों में पूर्ण करता है। तो हमें इन वासनाओं की इच्छाओं को ही समाप्त करना है चिंतन के द्वारा। तो योग भी चाहिए, राजयोग, परमात्मा से कनेक्शन, और ज्ञान का बहुत अच्छा चिंतन भी चाहिए, प्योरिटी, ब्रह्मचर्य, होलीनेस, वाइसलेसनेस, ये जो अलग अलग शब्द हैं, इनके बारे में हमें बहुत क्लियर भी होना चाहिए, और कभी हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि ये युद्ध है, युद्ध में थोड़ी बहुत हार भी हो सकती है। हारने का अर्थ ये नहीं होता कि हम विषय विकारों में चले जाएं, हारने का अर्थ है कोई संकल्प आ गया, कोई स्वप्न आ गया, कोई छोटी मोटी भूल हो गई, उसको पार करके हम फिर से बहुत उमंग उत्साह में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से इस सर्वश्रेष्ठ मंजिल को हम प्राप्त करेंगे। और जब हम दृढ़ता लाते हैं ना, ये बात सभी अंडरलाइन कर लें, प्योरिटी का व्रत लेते हैं, अपने मन में दृढ़ता लाते हैं, तो ऑलमाइटी शिव बाबा की मदद हमें बहुत मिलती है, ये हजारों लाखों के अनुभव हैं। और जो दृढ़ नहीं रहते, ठीक है कर लेंगे, विनाश के समय कर लेंगे, अंत में हो जाएगा, अभी तो ये एंजॉयमेंट होने दो, वो ढीले रह जाते हैं और वो कभी नहीं कर पाते, क्योंकि लंबे समय के विजयी रतन ही अंत में संपूर्ण विजयी बनेंगे। तो बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, आगे की चर्चा हम इस पे चालू रखते हैं।
जी ब्रदर जी, आपने बाबा के सुंदर महावाक्यों को और इस श्रेष्ठ लक्ष्य को हमारे सामने रखा है, और मुझे लगता है ब्राह्मण आत्माएं जैसे ही ज्ञान में आती हैं तो ये सुंदर बातें उन्हें बहुत प्रेरित करती हैं, प्रभावित करती हैं, और इसीलिए इस मार्ग पर वो चलते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि चारों तरफ मेनकाएं भी हैं जो परीक्षा लेते हैं भाइयों के लिए, और बहनों के लिए भी इसी प्रकार कुछ होंगे, कीचक की बातें आती हैं शास्त्रों में जो शायद उनकी परीक्षा लेते हैं। तो जब इस प्रकार के लोग हमारे आसपास हों, खास करके फील्ड में हम यदि जॉब कर रहे हैं, इस प्रकार के लोग हैं जो हमारी ऐसी परीक्षा लेते हैं या जो हमारे इस पवित्रता के मार्ग पर बाधक बनते हैं, वहाँ कैसे अपने आप को हम श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ाएं?
ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सबके सामने, क्योंकि हो नहीं है ही
जी,
चारों ओर, चाहे ऑफिस में हो, घरों में भी, आप एकांत में घूम रहे हैं, बगीचे में, वहाँ भी वाइब्रेशंस में ही इम्प्योरिटी है। और इसका कारण एक्चुअली तो किसी का दोष भी नहीं है, हम सतयुग से चली थी पवित्र आत्माएं, जन्म लेते लेते अब एंड में पहुंची हैं, ये बात सबको मालूम हो, ये कलयुग के एंड का समय है। तो इम्प्योरिटी अपने फुल फोर्स में है संसार में, बहुत युवक युवतियां जो चाहते नहीं है, परवश हो के इन चीजों में लग जाते हैं, फिर जीवन भर पछताते हैं, कोई जेल में पड़े हैं। तो ये व्यवस्था है कलयुग के अंत का इफेक्ट, और आत्मा ने अपनी सारी शक्तियां खो दी तो इम्प्योरिटी बढ़ गई, देवान बढ़ गया। अब शिव बाबा ने आकर हमें एक ऐसी सुंदर चीज याद दिलाई जिसके कारण हमारे प्योर संस्कार फिर से जगने लगे, और वो है कि सृष्टि की बिगिनिंग में लंबे समय तक, हजारों साल तक तुम संपूर्ण पावन थे, प्योर थे। तो जो देवकुल की आत्माएं हैं उनको याद आ गया, ओ ये सत्य है, और उनके वो प्योरिटी के संस्कार जो उनके अनकॉन्शियस माइंड में दबे हुए थे, सो गए थे, वो जग जाते हैं और प्योरिटी जी हो जाती है। तो चार ओर जो वातावरण है उसके प्रभाव से हमें बचना है। और देखो मनुष्य, जो क्लाइमेटिक इफेक्ट होता है दुनिया में उसके प्रभाव से भी तो बचता है। अब बर्फ गिर रही है अमेरिका में, ब्रिटेन में, कहीं बर्फ गिर रही हो तो मनुष्य बचते हैं ना उससे। ये थोड़ा ही कि बर्फ में बाहर जाके खड़े हो जाएंगे, एक घंटा खड़े हैं भाई चलो तो जम जाएगी इसके ऊपर, सेफ कर लेते हैं अपने को। ठंडी बहुत हो रही, लोग अपने घरों को गर्म कर लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी बहुत हो रही है एसी चला लेते हैं। तो ये भी गंदगी फैल रही है ना चारों ओर, तेज आंधी चल रही हो हम अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं, अंदर चले जाते हैं। हम भी आत्मा होकर इस देह के अंदर बैठ जाएं, जैसे छुप गए हम इस देह रूपी मकान में। एक तो ये अभ्यास हमें करना है, ये हमें स्वीकार करना ही है कि चारों ओर गंदगी है, इम्प्योर वाइब्रेशंस हैं। कीचक एक नहीं, कीचक महाभारत में वर्णन है, कीचक का, जब पांडव गुप्त वेश में रहे अपने वास में विराट राजा के पास, तो उसका मंत्री वो द्रौपदी को बहुत तंग करता था, तो रात को उसने भीम ने उसको मारा था। तो ये तो घर घर की कहानी है आजकल। अगर हम पवित्र वाइब्रेशंस फैलाएंगे, अब एक सुंदर बात सभी सुन लें, उनके वाइब्रेशंस हम पर पड़ें या हमारे वाइब्रेशंस उन पर जाएं, ये हमें सोचना है। पावरफुल कौन है? अगरबत्ती की सुगंध दुर्गंध को दूर करे या बाहर की दुर्गंध अगरबत्ती को भी दुर्गंध से भर दे, सोचना है। ऐसा होता नहीं है, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी फ्रेग्रेंट चीजें हैं, रूम स्प्रे भी आजकल होते हैं बहुत सारे,
चेंज कर देते हैं।
तो हम इस फीलिंग्स में रहें। मैं तीन चार अभ्यास बता रहा हूँ, आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, बाजार में गए हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ये पक्का करके ही घर से चलें। स्वयं भगवान मेरे साथ है, वो कवच हो जाएगा हमारा। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, ये याद करके चलें। और अच्छी चीज याद करें, मैं फरिश्ता इस संसार में आया हूं सभी आत्माओं को पावन करने के लिए, इस गंदे वातावरण को प्यूरिफाई करने के लिए। तो मैं दाता हूं, देने वाला, लेने वाला नहीं। ये फीलिंग्स हमें चिंतन के द्वारा, बार बार चिंतन के द्वारा पक्की करनी है। तो फिर हमारे वाइब्रेशन सबको जाएंगे, हम पर उनका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये मैंने हजारों से प्रयोग कराए हैं और बिल्कुल अच्छा अनुभव रहा कि हमारा प्रभाव उन पर पड़ने लगा, वो हमारा सम्मान करने लगे, हमारे बात हमारे सामने ऐसी वैसी बातें नहीं करते हैं, सिगरेट बीड़ी नहीं पीते हैं, बहुत सम्मान रखते हैं, हमें एक ऊंची दृष्टि से देखते हैं। तो ये अभ्यास हमें करना है।
मतलब मूल रूप से ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी अच्छी साधना करते हैं, कितनी अच्छी स्मृति में रहते हैं। कई बार रहते जी कि बहुत अच्छी हम साधना करते हैं, बहुत अच्छे संकल्प रखते हैं, विचार रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार बहुत फोर्सफुली ये हमारे अंदर से, एक हुआ कि बाहरी वातावरण है ही वैसा, अपने अंदर से ही वो संस्कार जागृत होते हैं और तब हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार हम नेट की ओर बढ़ जाते हैं, कई बार कुछ और अश्लील चीजें पढ़ने लगते हैं, या कई बार ये ना भी करें तो मन में ही उसे सस्टेन करने लगते हैं। तो यहाँ जो हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, ऐसे समय पे क्या करें जब ये फोर्सफुली हमारे अंदर उपज रहा
है? ये बहुतों के साथ हो रहा है। पहली बात तो एक मैं पिछले प्रश्न के उत्तर में कहूंगा कि मान लो आप ऑफिस में जा रहे हैं तो कईयों ने पहले ही संकल्प रखा, ये लोग बड़े गंदे हैं, इनसे मुझे बड़ी गंदी फीलिंग आती है, इसको वृत्ति कहते हैं, इस फीलिंग को चेंज करें, मुझे सबको बदलना है। भगवान की शक्तियां मेरे साथ हैं, मैं इन सब को बदलूंगी बदलूंगा। और अगर हमारी आत्मिक दृष्टि रहेगी तो वास्तव में दूसरे के बुरे वाइब्रेशंस हमको नहीं आएंगे, हमारे पवित्र वाइब्रेशंस उनको जाएंगे। अब रही बात ये, देखिए इसके पीछे बड़ी सूक्ष्म साइकोलॉजी है कि मनुष्य के अंदर जो बैड फीलिंग्स हैं, जो इम्प्योरिटी है हजारों साल की, अब वो जागृत तो हो रही है क्योंकि बाहर से उसे हवा मिल रही है। तो जैसे ये विकारों की अग्नि है और बाहर से इसको हवा मिलती है तो अग्नि और तेज जलने लगती है, ये कठिनाई हो रही। फिर चाहे मनुष्य कुछ गलत काम कर लेता है, चाहे अश्लील चीजें देखने लगता है, चाहे और कुछ पढ़ने लगता है ऐसी गंदी बातें जो उसने ज्ञान से पहले किया है वो करने लगता है। और इसका उसका एक ही लक्ष्य होता है ऐसा करने का कि उसकी जो इम्प्योरिटी वो सेटिस्फाई हो के थोड़ी देर में शांत हो जाए। पर ये सबके साथ नहीं होता क्योंकि इस काम वासना के लिए कहा गया है जितना जितना इसका भोग करेंगे इसकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। खाने पीने का ये हो सकता है, किसी को बहुत अच्छी मिठाई जलेबी या रसगुल्ले बहुत खिला दिए जाए, रोज रोज खिलाए जाए, एक मास के लिए 20-20 खिलाए जाए तो वो कहेगा हो गया बस, अब रसगुल्लों से डिस्टेस्ट हो गया मेरा। लेकिन काम वासना ऐसी नहीं है, बूढ़े होने तक भी ये सताती है, ये बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए हमें स्वयं पर कंट्रोल करना है। अब दो बातें हैं इसके लिए, एक तो हमें अपने चिंतन को बहुत सुंदर रखना है, चिंतन के बिना राहें नहीं बदलती। चिंतन कैसा हो हमारा, भाई अब हमने वो मार्ग छोड़ दिया, एक चिंतन, तो उस चीज की ओर हमें देखना ही नहीं है, हमने छोड़ दिया है वो मार्ग, वो हमारा मार्ग है ही नहीं, तो उससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं वो हम क्यों देखें क्यों पढ़ें। ये अपने में बार बार दृढ़ता हमें लानी होगी, इस पे सभी ध्यान देंगे। बार बार कुछ 5-10 बात आप अपने पास ऐसे लिख कर रख लें। देखो मैंने भी ये सब साधनाएं की हैं कि भाई हमें अब ये नहीं करना है। मेरे अर्ली इयर्स में मैं ये करता था, मैंने 12 बातें लिख कर रखी थी। हिंदी में एक कहावत है, जिस आम के फल ही नहीं खाने, आम का एक पेड़ है उस पे सुंदर फल लगे हैं लेकिन हम उसे खा नहीं सकते, वो किसी और का है, तो जिस आम के फल ही नहीं खाने उसके पत्ते गिनने से क्या लाभ, जिस मार्ग पे हमें जाना ही नहीं है उसके बारे में बार बार सोचने से क्या लाभ। दूसरी बात लिखी थी, भगवान का आदेश है, अब हम भगवान की आज्ञा मानेंगे अपने मन की नहीं मानेंगे, हमें अब अपने मन का मालिक बनना और अपने मन को उसी डायरेक्शन में चलाना है जिस डायरेक्शन को हमें भगवान दे रहे हैं। ऐसी बातें हमने प्रतिज्ञा दी कर ली है, भगवान को वचन दे दिया है, उस वचन को देखकर हम वापस नहीं लेंगे। जिन्होंने वचन नहीं दिया वो लिख कर दे दे अपने परम पिता को, परम सदगुरु को। ऐसे कुछ पावरफुल थॉट्स हमें अपने अंदर रखना चाहिए और विशेष रूप से एक अभ्यास जो हमारी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाएगा। ध्यान से सुन लें आप, अव्यक्त महावाक्यों में आता है, मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं, कर्म इंद्रियों की भी मालिक हूं, राजा हूं। ये भगवान के शब्द हैं। एक स्वमान की सीट, दूसरी स्वमान की सीट, सर्वशक्तिवान का टाइटल मुझे मिला है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, ये दो स्वमान है हमारे, इसकी सीट पर हम बैठे। सीट पर बैठने का अर्थ है इसके अभ्यास करते रहें। और तीसरा ले ले, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मुझसे पवित्र वाइब्रेशंस पूरे शरीर में फैल रहे हैं, कर्मेंद्रियों में फैल रहे हैं, जा रहे हैं, शक्तियां फैल रही हैं। ये अभ्यास दो बार कर ले रोज, एक बार सवेरे एक बार शाम को सोने से पहले 5-5 मिनट, तो कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी। इमोशंस जो बैड इमोशंस हैं वो डेड होते जाएंगे, प्योरिटी के जो प्योर इमोशंस हैं वो एक्टिवेट होते जाएंगे। और ये जो इफेक्ट हो रहे हैं ये हो ही रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि क्यों हो रहे हैं। ये अंत का समय है, बॉडी भी इम्प्योर है तो मन भी इम्प्योर है, तो एक्शंस भी इम्प्योर रहे हैं। अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारे प्योर वाइब्रेशंस, मैं आपको याद दिला दूं जिसकी ओर हम देख रहे हैं अब आने वाले समय की ओर, कि एक दिन आएगा इस पूरे संसार में प्योरिटी का रिवॉल्यूशन होगा। जैसे अब हर व्यक्ति काम वासना में लगा हुआ, इसको कहेंगे काम वासना का रिवॉल्यूशन है, इम्प्योरिटी का रिवॉल्यूशन है। ऐसे हर धर्म की हर आत्मा प्योर बनने की इच्छुक होगी, क्योंकि घर वापस जाने का समय आ जाएगा। तो प्योरिटी का रिवॉल्यूशन हमें लाना है, और इसके निमित्त वो बनेंगे जो अपने को एब्सोल्यूटली प्योर कर लेंगे, जिसे वाइसलेसनेस कहते हैं। ये अभ्यास सभी करेंगे।
जिस गली में नहीं जाना है उस गली का हम चिंतन ना करें, या जिस देश में नहीं जाना है उसका नक्शा क्यों देखा जाए, एक बहुत सुंदर सा चिंतन है। और सुंदर स्वमान की बात भी प्रातः जी आपने कही है। कई बार जो बाहर के साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, हमें कहते हैं कि नहीं, ये तो प्रकृति का एक नियम है और सदियों से ये चला आता जा रहा है। चाहे वो देवी देवता भी क्यों ना थे, उनके भी मैरिड लाइफ थे, बच्चे थे, तो इस प्राकृतिक चीज के विरुद्ध है ये, यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। और डॉक्टर्स ये कहते हैं यदि आप इसे सप्रेस करेंगे तो मानसिक बीमारी हो सकती है, कई शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं, आपकी नींद उड़ सकती है, चिड़चिड़े हो सकते हैं, आदि आदि इत्यादि उनके पास लंबी लिस्ट है। अध्यात्म इसका क्या उत्तर देते हैं?
बिल्कुल, उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि ये चीज हजारों साल से चली आ रही है। लेकिन शायद मेडिकल वाले या साइकोलॉजिस्ट एक बात को भूलते जा रहे हैं कि पहले इस चीज में बहुत संयम था, कंट्रोल्ड, और अब ये अनलिमिटेड है। इससे मनुष्य की शारीरिक शक्तियां भी नष्ट हो रही हैं, और इसके कारण ही उन्हें नींद भी नहीं आ रही। अति सेक्सुअल लोग भी रात को सो नहीं पा रहे, क्योंकि सारी शक्तियां नष्ट कर दी है। मैं बुरा न माने कोई भी, पर मैं कहूंगा हमारी मेडिकल नॉलेज या हमारी साइकोलॉजी की नॉलेज परफेक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट है। बहुत सारे अनुभवों से मनुष्य वंचित है, ये विद्वान या ये स्कॉलर्स, रिसर्च करने वाले, ये सब कुछ नहीं जान सकते। ये इम्प्योरिटी का मार्ग, ये जो आज दिखाई दे रहा है, ये शुरू में नहीं था, ये अब से 100 साल पहले भी नहीं था, और 500 साल पहले, 1000 साल पहले तो मनुष्य में बहुत प्योरिटी थी, चाहे वो क्रिश्चियन फिलोसफी वाले हों, और बहुत सारे जो फिलोसफर्स हुए हैं संसार में, जो फेमस हुए हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है कि मनुष्य को केवल संतान उत्पत्ति के लिए विषय भोग करना चाहिए। लेकिन वो चीजें तो छूट गई ना, इसलिए ये सबसे बड़ा पाप हो गया। अब आए हम दूसरे फील्ड में, भगवान जो ज्ञान का सागर है, असलियत में नॉलेजफुल वही है, ओशन ऑफ नॉलेज, जिससे सब कुछ पता है, उसने ये नॉलेज दिए कि सेक्स लस्ट इज योर बिगेस्ट एनिमी, आजकल बिगेस्ट एनिमी हो गया है। और बल्कि उन्होंने तो एक और बहुत बड़ी बात कह दी, ये सबसे बड़ा पाप है। और आज देख लें आप दुनिया में, सारी दुनिया में कितने रेप के केस हो रहे, कितनी दुर्गति हो रही है लोगों की, और मैरिड लाइफ कितनी ब्रेक हो रही है, उससे मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, खुशी नष्ट हो रहे हैं, सभी देशों में ये हो रहा है। पहले भारत इससे इसमें थोड़ा पीछे था, अब वो तो और आगे निकल गया है। वेस्टर्न कल्चर को सभी ने फॉलो कर लिया, अपनी मान्यताओं को लोग भूल गए, दूसरों को फॉलो करने लगे, तो ये दुर्गति हुई है। अब इस युग का परिवर्तन होने वाला है, ये बात सभी को मालूम रहे। सत्य उत्रेता द्वापर कलयुग, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, ये चार युगों का साइकिल है। ये संसार एक साइक्लिक ऑर्डर में है, आप जानते हैं, ये प्रकृति में भी ग्रह साइक्लिक ऑर्डर में ही तो घूम रहे हैं। कोई कहता है सूरज के चारों ओर धरती चक्कर लगा रही है, चांद के चारों ओर, चांद धरती के चारों ओर, बहुत सारे स्टार्स एक साइक्लिक ऑर्डर में चल ही तो रहे हैं। तो ये संसार, ये युग अब बदलेगा, आयरन एज विल चेंज इनटू गोल्डन एज। इसलिए भगवान ने आदेश दिया, अब पवित्र बनो, तुम्हारी नेचुरल नेचर प्योरिटी है, जो इस सेक्स लस्ट को तुमने अपनी नेचर मान लिया है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, चाहे साइकोलॉजिस्ट ने कहा चाहे डॉक्टर्स ने कहा, ये सबसे बड़ा इग्नोरेंस है। अब इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। क्यों इम्यूनिटी खत्म हुई कोरोना काल में? क्यों चिल्ला रहे थे लोग इम्यून पावर बहुत कम है, इसको बढ़ाओ, ये करो वो करो, लोग गंदा भोजन खिलवा रहे थे, नॉन वेज खाओ इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। किसी ने ये नहीं कहा प्योरिटी को अपनाओ तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। असलियत ये है। तो अब भगवान हमारे प्योर संस्कारों को इमर्ज कर रहा है और अब बहुत सारी आत्माएं पवित्र बनेंगी ही। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इसमें असफल हो रहे हैं और हो जाएंगे, और नव युग इस धरती पर आएगा बट विद द पावर ऑफ प्योरिटी।
जी जी, आपने एक बात कही व्रता जी, बिगेस्ट एनिमी है और पाप है। अब इस पे तो चिंतन करना पड़ेगा सचमुच सभी को कि कैसे ये हमारा परम शत्रु है।
मैं बीच में एक छोटी सी बात, कैसे शत्रु है? एक युवक ने रेप किया, अब नजदीक की बात है
जी।
सजा हुई उसको 15 साल की, अब वो जेल में है। पत्रकारों ने इससे इंटरव्यू लिया, अच्छा पढ़ा लिखा था, कहा देखो मैं कितने बड़े बड़े स्वप्न किए हुए थे अपने जीवन के करियर के, मैं एक अच्छा वैज्ञानिक बनूंगा, पहले प्रोफेसर बहुत होशियार, अचानक मुझे ये काम वासना ने सताया और मैंने ये काम कर लिया और अब पश्चाताप के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा, सारा जीवन खत्म हो गया ना।
जी जी,
इंटरव्यू आ रहा था उसका, अखबार में छपा था। तो बिगेस्ट एनिमी हो गया ना, ये कहानी एक युवक की नहीं, मैं अगर भारत में कहूँ तो करोड़ों युवकों की ये कहानी हो गई है, जिन्होंने या तो जेल का दरवाजा देख लिया है, या इमोशनली वो बहुत वीक हो गए हैं, या वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। और जो स्टूडेंट हैं उनमें बहुतों में एक बड़ी चीज दिखाई दे रही है, इस काम वासना के कारण किसी से किसी का अफेयर चल रहा है, सारी बुद्धि उधर लगी हुई है, कंसंट्रेशन नष्ट हुआ, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेमोरी पावर वीक हो गई है।
जी जी,
तो ये बिगेस्ट एनिमी हो गया ना।
बिल्कुल बिल्कुल, और गीता में भी शायद ये बात आती है कि काम जो है, काम क्रोध और लोभ, ये नर्क के द्वार हैं और इसे पाप की संज्ञा वहां पे भी भगवान ने दी हुई है। प्रथा जी, एक बात आती है, अब यदि हम ज्ञान मार्ग की बात करें, जब कपल चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन एक ने समझ लिया ज्ञान, पवित्र बन रहा है, पवित्र धारणा को अपना रहा है, लेकिन दूसरा नहीं चल रहा है, तो दूसरा परेशान है, दुखी है, कई बार बात डिवोर्स तक भी पहुंच जाती है, तो फिर यहाँ कैसे अपने साथी के साथ चला जाए?
देखिए, ये हो रहा है क्योंकि एक में प्योर संस्कार हो गए तो दूसरे में तो इम्प्योरिटी है
जी।
बहुत पति कह रहे हैं अपनी पत्नियों को, भाई ठीक है तुम्हें ये मार्ग अच्छा लगता है तुम चलो इस पे, मैं दूसरी मैरिज कर लेता हूँ। कई बहनें तो समझदार होती हैं, भाई तुम कर लो, लेकिन कई बहनों को ये होता नहीं, नहीं मुझे पवित्र भी रहना और तुम्हें दूसरी शादी भी नहीं करनी है, तो संघर्ष हो जाता है
जी।
लेकिन हम हर एक व्यक्ति इसमें स्वतंत्र भी है। अगर आप पवित्र बनना चाहती हैं और आपका साथी पवित्र बनना नहीं चाहता, उसको उसके मार्ग पे जाने दो, लेकिन अगर आप में बहुत पावर है तो आप उसे भी पवित्र बना सकती हैं। इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, आपको उसे पवित्र भोजन खिलाना होगा, पवित्र पानी पिलाना होगा, उसको पवित्र वाइब्रेशंस देने होंगे, क्योंकि ऐसे संसार में बहुत लोग हैं जो पवित्र बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। जैसे फ्रांस के पीछे घटनाएं हुई, मैं कहना नहीं चाहता पर वो इंटरनेशनली फेमस हो गई हैं, कहने एक पादरियों ने जो प्रेस्ट होते हैं उन्होंने क्या क्या गंदे काम कर लिए। तो हालांकि उनके यहाँ ब्रह्मचर्य से उनकी यात्रा शुरू होती है और वो जानते हैं इसके बिना वो प्रेस्ट नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हमें अच्छा योगी जीवन बनाना होगा, अपनी सद्भावनाओं को बढ़ाकर अपने साथी को भी गुड फ्रेंड बनाना होगा, और यदि ऐसा नहीं होता तो उनको उनके मार्ग पे चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ना होगा।
जी जी जी, कई बार आर्थिक रूप से हम उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं या स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो यहाँ पे फिर निर्णय करना हमारे लिए कठिन हो जाता
है। बिल्कुल, ये बात थोड़ी प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम की आती है, लेकिन पवित्रता में इतनी बड़ी शक्ति है कि पवित्र जीवन अपनाने के बाद हम अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं, तो जो सारे संसार की पालना करने वाला है वो आपकी भी पालना करता रहेगा। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग विल की जरूरत है। और मनुष्य अपना मार्ग निकाल ही लेता है, और मनुष्य को ये जानना चाहिए कि हमारा श्रेष्ठ भाग्य हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, इसलिए भोजन खाने में, जीवन यापन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
कई बार व्रता जी मन में ये विचार आता है कि जब हम ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं तो कहीं ये डिसर्विस तो नहीं है, क्योंकि समाज में लोगों में एक गलत बात जाती है कि देखो ब्रह्मा कुमारियों ने इनको क्या सिखाया कि इनका घर ही टूट रहा है और ये मान नहीं रहे हैं, जिद्दी हो गए हैं, ये कैसा अध्यात्म है, ये कैसा
ज्ञान। हाँ, ये भी नेचुरल रूप से ये वातावरण तो बनता ही है, लेकिन घर तो आजकल बिना प्योरिटी के भी टूट रहे हैं, झगड़ों के कारण टूट रहे हैं, कितने टूट रहे हैं। चलो ज्ञान मार्ग पे चलने से तो दो चार टूटेंगे, पर दूसरी फील्ड में जाने वाले तो सैकड़ों टूट रहे हैं, रोज हजारों टूट रहे हैं। ठीक बात है, कहीं कहीं डिसर्विस की बात भी होती है, पर प्योरिटी एक बहुत बड़ी शक्ति है। देखो भारत में महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू किया, बहुत सारे स्टेप्स लिए, तो पवित्रता को मूल धारणा बनाया था। जो भी नेता आए थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, मुस्लिम नेता बहुत सारे, भाई ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो तुम देश को स्वतंत्र करा सकोगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, इसको संसार भूल गया है। तो हम अपनी इस पावर को पहचानेंगे तो डिसर्विस होगी थोड़ी सी, लेकिन सर्विस होगी उससे 100 गुना ज्यादा। इसलिए हमें ये निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, और ये सोचकर हमें अपने प्योरिटी के मार्ग को छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब ये भगवान की पुकार है। जैसे बच्चे पवित्र बनो, मुझे पवित्र आत्माओं की जरूरत है, क्योंकि ये संसार दुखों की खान बन चुका है, जैसे दुखों का सागर यहाँ लहरा रहा है, इसलिए इन दुखों को समाप्त करने के लिए पवित्र आत्माओं की जरूरत है। तो हम भगवान की सुनेंगे, हम भगवान के कार्यों में सहयोगी बनेंगे, मनुष्य तो जरूर हमारा विरोध करेंगे।
जी जी जी, आपकी बात सुनते हैं या बाबा की मुरलियां सुनते हैं तो एक मन में सुंदर भाव तो आता ही है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, और शक्ति जागृत होती है। लेकिन कई बार मन में एक संशय का भाव भी आता है कि हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, और इसका एक कारण है कि कई बार काफ़ी लंबे समय से, जैसे मैंने विश्वामित्र की ही बात प्रारंभ में कही, लंबे समय तक चलने वालों को भी वो देखते हैं कि वो भी पराजित हुए और कई बार जीवन संघर्षमय हो गया, तो मन में एक द्वंद रहता है, तो इसे कैसे सकारात्मक करें।
सुंदर क्वेश्चन है ये जिसने भेजा है। हमें विश्वामित्र नहीं बनना है, हमें अंगद और महावीर के समान बनना है, पावरफुल। हार मानने वालों की ओर नहीं देखना है, जीत पाने वालों की ओर देखना है। जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको सुनना है, फेलियर स्टोरीज को नहीं सुनना है। ये मार्ग ही ऐसा है कि इसमें बहुत लोग फेल होते हैं।
जी,
ज्ञान मार्ग पे चलने वाले भी कितने पुरुष लोग फेल हो रहे हैं, बहनें फिर भी स्ट्रोंग रहती हैं। पुरुष लोग बहुत फेल होते हैं, और उस फेलियर का कारण है कि वो योग अभ्यास पे ध्यान नहीं देते। वो आते हैं, माँ बाप सुने, सेवाएं की, लगन में रहे, उमंग में रहे, योग 10-15 मिनट आधा घंटा कर लिया, दैट्स ऑल। लेकिन जब तक 4 घंटे योगी न बने कोई डेली, बैठकर नहीं, स्मृति स्वरूप रहकर, तब तक प्योरिटी को स्ट्रोंग नहीं कर सकता। इसलिए ये जो निगेटिव संकल्प होता है, हम चल पाएंगे या नहीं, ये मनुष्य को बहुत इनसिक्योर फीलिंग कराता है, एक भय पैदा करता है, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, देखो फलाना था वो चला गया, फलानी थी वो चली गई, बड़ा नाम था उसका वो भी चला गया, कहीं हमारे साथ तो ना हो जाएगा। इससे तो हम उस विजन को बनाते हैं और उसका आह्वान कर रहे हैं कि हम भी जाएंगे। हम दृढ़ संकल्प करें, सारे चले जाएं, हम नहीं जाएंगे। भगवान हमारा साथी है, हमारा भविष्य सिक्योर है, भगवान साथ है। अरे वो हमारा हाथ पकड़ कर चलेगा, लेकिन योग बहुत अच्छा करेंगे तो ईश्वरीय सुख मिलेगा, उससे जीवन में दृढ़ता बहुत आएगी।
जी जी जी। कई बार बाबा जब ये एक बात कहते हैं कि जो गिर गए, हार गए, थोड़ा जिनके मन में ये द्वंद्व चलता रहता है, वो तो जैसे पांचवी मंजिल से गिर गए या पदभ्रष्ट हो गए, अब बाबा उनकी ओर नहीं देखेंगे आदि आदि, बाबा के महावाक्य थोड़े से कठोर से हैं, तो ये जब सुनते हैं, और नेचुरल है कि संस्कार हैं सब में, वातावरण है बाहरी रूप से ना सही लेकिन मन में कभी ना कभी उतार चढ़ाव तो हो ही जाता है, तो यहाँ पे फिर व्यक्ति थोड़ा सा निराश हो जाता है।
देखिए भगवान पढ़ाता है, गुरु लोग भी जब अपने शिष्यों को बहुत स्ट्रॉन्ग करते थे इस मार्ग पे, तो कहते थे शेर की गुफा में एक रात बिता के आओ। देखो डरते तो नहीं, जाओ वैश्याओं के पास एक रात बिता के आओ, तुम कितना स्ट्रॉन्ग है मैं भी देखूं, तुम भी देखो। जाते थे, स्ट्रॉन्ग बन के आते थे। बाबा की बातें ये कठोर हैं, सचमुच कठोर हैं। और जब कोई गिरा हुआ मनुष्य सुन लेता है कि पांच मंजिल से गिरे, हड्डगुट टूट गए बच्चे,
अब चढ़ नहीं सकते,
अब नहीं चढ़ोगे तो तुम्हारा पद गया, तुम तो ये हो जाओगे वो हो जाओगे,
तो और निराश हो जाए
तो निराशा के अंधकार में डूब जाता है मनुष्य। लेकिन बाबा तो बाबा माना भगवान हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रिक्ट भी करते हैं। भाई कहीं कुछ चीज है और हमें बच्चों को बचाना है तो हम स्ट्रिक्ट करेंगे, माने ही जाना बिल्कुल भी। लेकिन बाबा की बातों को हमें बहुत पॉजिटिवली लेना है। बाबा हमें निश्चित रूप से डर भी पैदा कराते हैं कि बुराइयों से हम डरें, पाप कर्मों से हम डरें, क्योंकि हमें पुण्य आत्मा बनना है, हमें लाइट हाउस बनना है, हमें विश्व परिवर्तन करना है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हो गया हो तो ऐसी कोई बात नहीं कि गिर के मनुष्य नहीं उठता है। बाबा की दूसरी मुरली आप सुने, एक ही मुरली से सब कुछ नहीं जाना जा सकता, जिसमें बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भूल हो जाए, तुम फेल हो गए, फिर से उठो, हिम्मत से आगे बढ़ो, तुम आगे निकल जाओगे, खोया हुआ राज मिल जाएगा। और ये देखा गया, मैंने तो बहुत लोग देखे हैं, कम से कम सैकड़ों तो देखे ही अपनी आंखों से, जो कुमार थे ग्रस्त में चले गए, बच्चे हो गए, फिर आए हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं। उनको निश्चित रूप से उगलानी रहती है, मैं उनको जरा फिर खत्म कर देता हूँ उगलानी को कि नहीं अब फिर से आ गए, ये तुम्हारा पार्ट था, अब तेजी से चलो। और कई ऐसे लोग बहुत तेजी से चल रहे हैं और वो भूल गए कि हमसे कुछ हुआ है। और देखिए मनुष्य, एक गलती कर दे हो, एक पाप कर ले और 100 पुण्य कर दे तो वो पाप फिर रहता नहीं है।
जी, जी।
इसलिए ऐसा निगेटिव होने की जरूरत नहीं, बाबा तो हमें जरा टाइट करता ही है।
आपकी बातों से ब्रदर जी, दादी जानकी जी की भी बात याद आ गई, वो कहा करती थी यदि पाप हो गया है तो इतने ज्यादा पुण्य करो कि उसका जो बोझ है वो हल्का हो जाए और वो पुण्य का ही एक प्रताप और प्रभाव जीवन में।
नहीं दादी तो ये कहती थी शरीर से पाप हो गए तो शरीर को सेवाओं में लगा दो।
जी
तो जैसे सिख धर्म में भी है ना, कोई जरा सी गलती कर दे जूते साफ करो, मंत्री भी जूते साफ कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, तो शरीर से गलती हुई है, मुख से गलती हुई है तो शरीर से ही पुण्य कर देंगे
जी,
खत्म हो
जाए उसका प्रभाव। तो इस बात को हमें ज्यादा सीरियसली ना लेकर के यदि कोई गलती हुई हम आगे बढ़े,
आगे
उन्नति की ओर अपने कदम बढ़ाएं। पिता जी ये एक प्रश्न है कि पवित्रता हमारी चारों सब्जेक्ट से कैसे जुड़ा हुआ है या कैसे आवश्यक है उनके लिए, क्या ये हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं हमारी मदद करने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है, बल देने वाला है तो कैसे?
पहले तो मैं ये कहूंगा कि पास्ट का चिंतन ज्यादा ना करें। एक कपिल अभी आए थे मेरे पास, वो कुमार था और शादी हुई, पत्नी उसकी इतनी अच्छी आई कि उसको पवित्र बना दिया। ज्ञान में वो था, वो बाद में आई, लेकिन उसने उसको पवित्र बना दिया। अभी उसको बार बार रहता, अभी आए थे, अरे भाई मैंने क्या कर दिया, मेरा तो भाग कम हो गया, और वो उसे समझाती रहती है तो मेरे पास लाए। मैंने कहा ये सोचने से क्या होगा, तुम वर्तमान की खुशी को नष्ट कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी इतनी अच्छी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा तुम्हें मिली है, हो सकता है इसके कल्याण के लिए तुमने शादी की हो, ये बच्चे कितने अच्छे, वो तो योग करते फर्स्ट क्लास, तुम तीन आत्माओं का और कल्याण कर रहे, तो तुम्हारा उपाप तो वैसे ही खत्म हो गया, इसलिए हल्के हो जाओ। तो बहुत ही पॉजिटिव हमें रहना है और पास्ट को पूरी तरह से भूल जाना है। जितना प्योरिटी बढ़ेगी, बुद्धि हमारी स्वच्छ होगी, क्लीन होगी, पवित्र होगी, और ज्ञान की धारणा बुद्धि में बहुत जल्दी होगी। ज्ञान के जो ईश्वरीय नशे हैं, जो बाबा महावाक्यों में बताता है, उसकी खुशी जीवन में, डीप साइलेंस, ये सब हमें अनुभव होती रहेगी। और ज्ञान हमें मदद करता है प्योर बनने में, हमें ज्ञान ही तो मिला है प्योरिटी का, जो ज्ञान साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो प्योरिटी को इग्नोर कर दिया, मेडिकल वालों ने भी प्योरिटी को इग्नोर कर दिया, तो प्योरिटी का कोई ज्ञान ही नहीं है वहाँ। शास्त्रों में भी लिख दिया ब्रह्मचर्य बड़ी तपस्या है, इसको अपनाओ, नहीं अपना पाए लोग, क्योंकि इसका डिटेल ज्ञान नहीं है। हम अपनी कर्मेंद्रियों को योग बल से कैसे शीतल करें, हम अपनी भावनाओं को, अपनी वासनाओं को कैसे शांत करें, उस वैक्यूम को भरें। ऐसे नहीं हमने वासनाओं को तो शांत कर लिया लेकिन कुछ भरा नहीं तो फिर से जग गई, इसलिए हमें बाबा राजयोग सिखाकर शक्तियों से स्वयं को भरना, परमानंद से स्वयं को भरना, ईश्वरीय सुखों से सबको भरना सिखाता है। फिर जितनी प्योरिटी होती है योग उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि प्योरिटी की ताकत ब्रेन को पावरफुल बनाती है। और सभी को याद रहना चाहिए, योग अभ्यास के लिए, योग में एकाग्रता के लिए एक साउंड ब्रेन, एक हेल्दी ब्रेन परम आवश्यक है। जिन लोगों को डिप्रेशन है, जो मानसिक रूप से कमजोर पड़ गए हैं, वो योगी नहीं बन पाते, इसलिए प्योरिटी योग को बढ़ावा देगी, मदद करेगी, और योग बढ़ते हुए हमारी प्योरिटी का लेवल ऊंचा उठता जाएगा। धारणाएं, जब हम प्योर बनेंगे तो बहुत संतुष्ट आत्मा होंगे। सच्चे पवित्र आत्मा का लक्षण है नम्रता, ईगोलेसनेस, बहुत ईजी हमें अपने को बना देना है, और हमारी जो दृष्टि है वो भी हमें आत्मिक कर लेनी है। तो वृत्ति बदलेगी, फीलिंग्स बदलेंगी, वाइब्रेशंस बदलेंगे, सद्गुण, सभी के लिए प्रेम और सद्भावनाएं प्योरिटी के आधार पे हो जाएगा। और सेवा का तो मैं ये कहूँगा बाबा के महावाक्यों से कि प्योरिटी तो एक चुंबक का काम करेगी, देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करेगी। जिस निमित्त आत्मा की प्योरिटी जितनी ज्यादा है उसकी सेवाएं भी उतनी ज्यादा है। जैसे बाबा कहते थे, जो गुरु सन्यासी जितना पवित्र होगा उसके शिष्य उतने ही ज्यादा और योग्य होंगे। तो हमारे पास भी जो निमित्त आत्मा इंस्ट्रूमेंट जितने पवित्र हैं उतनी सेवाओं में वृद्धि है, क्योंकि प्योरिटी हमें निस्वार्थ बनाती है, हमें निष्काम बनाती है, और देने की भावना पैदा करती है। लेना कुछ नहीं, देना ही देना है, वाइब्रेशंस पावरफुल हो जाते हैं, तो आत्माएं संतुष्ट होती हैं, तो सेवा बढ़ने लगती है।
ये जो संपूर्ण पावनता की बात है वो क्या बिल्कुल अंत में ही आएगी, और अंत तक ये जो ऊपर नीचे द्वंद्व की बात है उसके लिए हमें तैयार रहना होगा? और ये संपूर्ण पवित्रता की जो बात है, मान लीजिए मुझे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन अब तक भी यदि उतार चढ़ाव आता है तो क्या ये मेरी कमी है या इस यात्रा का ही एक अंग है?
नहीं, ये यात्रा का भी अंग है, क्योंकि इम्प्योरिटी हजारों वर्षों में आई है, तो एक लंबा समय ये लेती है, टेक्स टाइम, इसमें कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारी साधनाएं चलती रहें और हम अपने को ऑब्जर्व करते रहें, अपने पे दृष्टि रखें कि चीजें बदल रही हैं। भाई पहले किसी को गंदे स्वप्न बहुत आते थे, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पहले दूसरों को देखकर दृष्टि इम्प्योर होती थी, अब कभी कभी हो रही है। पहले कर्मेंद्रियों का रस ज्यादा आकर्षित करता था, अब बहुत कम हो गया। तो हम आगे बढ़ रहे, भले ही परफेक्ट प्योरिटी नहीं आ रही है, और ये तो सत्य है कि परफेक्ट प्योरिटी एंड में ही आती है, क्योंकि एक नेचुरल सिद्धांत ये है कि जब आत्मा कंप्लीटली प्योर हो जाएगी तो ये इम्प्योर शरीर छूट जाएगा, फिर घर जाने का समय होगा। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होंगी, वो कुछ होंगी केवल, जो संपूर्ण पवित्र बनकर इस संसार पर रहेंगे, संसार में रहेंगी, इस धरा पर रहेंगी, ताकि उनके प्योर वाइब्रेशन से विनाश काल में अनेक आत्माओं को राहत मिल सके। ये कुछ विशेष आत्माओं का पार्ट भी है।
जी जी, मतलब ये एक यात्रा है। यदि हल्की उतार चढ़ाव है तो हम इसे यात्रा का अंग मानते हुए आगे बढ़े। और साथ ही जैसे एक आपने बात कही व्रता जी की, हम कुछ पैमाने भी देखते चलें कि हाँ, यदि इस प्रकार से उन्नति होती चल रही है तो हम आगे की ओर ही बढ़ रहे हैं। वर्तमान समय के अनुसार आप सबसे मिलते हैं, देश के हों या विदेश के हों, सभी भाई बहनों से कौन सी ऐसी बातें आपको लगती हैं जो कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी को जागृत करने वाली हैं, जिन पर ध्यान रखने की सभी ब्राह्मणों को आवश्यकता है?
बिल्कुल, लोग मिलते हैं और कई लोग अपनी पर्सनल बात करते हैं अलग से। कई बुजुर्ग लोग आते हैं और कहते हैं, भाई हम लंबे समय से ज्ञान योग के मार्ग पे भी हैं और हमारी साधनाएं भी अच्छी रही और हम 80+ हो गए हैं, स्टिल वी हैव टू फेस इम्प्योरिटी। तो बेचारों को लज्जा भी आती है। मैंने कहा, लज्जा नहीं करो, मैं इन सब बातों को जानता हूँ, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो केवल शरीर से रिलेटेड नहीं है प्योरिटी, वो तो मन से भी रिलेटेड है ना। तो हम उनको बहुत हल्का करते हैं। इसमें कई चीज़ें आजकल दिखाई दे रही हैं जो बाबा ने बहुत पहले बता दी थी कि जब तुम अंत के समय के समीप पहुँचोगे तो बाहरी इम्प्योर वातावरण के कारण तुम्हारे अंदर छुपी ही इम्प्योरिटी भी जग जाएगी। ये बहुतों में दिखाई दे रहा है। बहुत लोग ये कहते हैं कि पहले हम बहुत अच्छे थे, इसके लिए हमारे मन में उमंग उत्साह था, प्योर संस्कार जागृत हो, धीरे धीरे वो दबकर इम्प्योरिटी जागृत होने लगी। ये आजकल बहुत हो रहा है। तो इसके लिए बहुत अच्छी साधना है 5 स्वरूपों का अभ्यास। हम उस साधना को करते रहें तो हमारा कोई भी इम्प्योर संस्कार जगेगा नहीं, बल्कि वो नष्ट हो जाएगा और प्योर संस्कार उसकी जगह ले लेंगे, तो वो बिल्कुल मर्ज होते होते समाप्त हो जाएगा।
जी जी, कई बार कुछ ट्रिगर्स होते हैं, क्या आपको लगता है पता जी कि कुछ खान पान ऐसे हो सकते हैं, कुछ संग ऐसा हो सकता है, कुछ देखना सुनना, इस प्रकार की चीज़ों पर भी हमें नियंत्रण की जरूरत?
नहीं, बहुत ज़्यादा खान पान की बात ऐसी बढ़ रही है। मैं कहूँ आपको कि आजकल केमिकल्स बहुत डाले जा रहे हैं भोजन में।
जी जी,
और दूसरा पानी बहुत दूषित होता जा रहा है और वातावरण तो दूषित है ही हमारे चारों ओर। और चौथी चीज आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन, सोशल मीडिया। अभी कई लोग ज्यादा देखने लगते हैं, जैसे हमने बात की थी, उनको जो सटल इम्प्योरिटी है वो उसोल ले जाती है।
जी, जी,
फिर वो ज्यादा देख लेते हैं,
उसको एंजॉय करना
है। हाँ, इस चीज से बचना है। बस चारों चीजों पे हम ध्यान देंगे। और इसमें बाबा के महावाक्यों में हम रोज एक बात सुनते हैं कि अगर तुम योगयुक्त भोजन बनाओ और खाओ तो बहुत सारी प्योरिटी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मतलब ये एक चमत्कारिक चीज है। अन्न का प्रभाव देह पर भी पड़ेगा, मन पर भी पड़ेगा, विचारों पर भी पड़ेगा। तो हम विशेष रूप से भोजन तो सभी बनाते हैं, ठीक है, एक बनाएगा चार खाएंगे, तो भोजन में प्योर वाइब्रेशंस भर दें, जिसकी हम चर्चा बहुत करते हैं, तो ये भोजन के वाइब्रेशंस हमें बहुत मदद करेंगे। पानी भी चार्ज करके पी लें, 2-3 बार तो पी ही लें, पानी को दृष्टि दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, 7 बार संकल्प करें फिर पी लें। और ये जो सोशल मीडिया के साधन है, थोड़ा परहेज वो तो खुद करना पड़ेगा। अभी हमें पता हो इधर गड्ढा है, फिर भी हम चल रहे हो आंख बंद करके, तो हमें तो गिरना ही है, वो खुद को खुद बचाना होगा।
जी जी जी, मतलब हम एक नियम और संयम अपने लिए स्वयं बनाएं, और कि ये करना है, सेवार्थ हम यूज तो जरूर करें जो बाबा ने हमें साधन दिया है, लेकिन उसके अति में ना चले जाएं। एक बार जो आपने कही व्रता जी, उस वो हमारे पास प्रश्न है, अंश और वंश सहित हम समाप्त करने की बात करते हैं। वंश तो चलिए बहुत बड़ी चीज है और हमने बाहर बाहर रूप से तो कटाई छटाई कर ली, लेकिन जो अंश की बात है वो कैसे समाप्त हो इन साधनाओं के साथ साथ, किनका ध्यान भी रखें और क्या किया जाए?
बहुत अच्छे महावाक्य हैं भगवान के, बीज रूप स्थिति से इन विकारों का बीज जलकर नष्ट हो जाएगा। उस पे बहुत ध्यान देंगे, आत्मिक स्वरूप की स्थिति, परम धाम में जाकर शिव बाबा से वाइब्रेशंस लेना। लेकिन वंश की बात भी मैं जरूर कहूंगा, हमने मोटे मोटे काट तो दिए इनकी टहनियां, इनकी ब्रांचेज, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो पवित्र आत्माएं उनको पहचानती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि परचिंतन कर रहे हैं, इसको देख रहे, उसको देख रहे, अपने को देखना भूल ही गए हैं, कोई हीन भावनाओं में रहते हैं, कोई बहुत निगेटिव सोचते रहते हैं, किसी में ईर्ष्या हो गई है, कोई तेरे मेरे में लग गए हैं, तो इससे क्या हो रहा है? ये शाखाएं थोड़ी छोटी होती है ना, थोड़ी शाखाएं बड़े टहना तो अलग है, वो तो चलो दिखाई देता है, ये थोड़ी छोटी छोटी निकली रहती हैं। और कई बुद्धिमान ज्ञानियों को ये पता ही नहीं कि उनकी प्योरिटी की शक्ति से नष्ट हो रही है, वो कमजोर पड़ रहे हैं। इसलिए प्योरिटी का तेज, त्याग का तेज, शेष भाग्य मिला है उसकी खुशी का तेज वो जीवन में दिखाई नहीं देता, इनको काटना पड़ेगा।
जी 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 जी, मैं वही इस प्रश्न पे मेरा भी ध्यान जा रहा था बता जी, कि कई बार थोड़ी लंबे समय तक ज्ञान में चलने के बाद हमें लगता है कि हम तो पवित्र ही हैं, हमारा जीवन ही अच्छा हो गया है, अब तो मार्ग ही यही है, तो शायद ये कुछ चीजों पे हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं,
बिल्कुल ये होता है, क्या होता है कि एक व्यक्ति व्यर्थ सोच रहा है, अब वो रहता है इस उसमें चिंतन में, वो ये कर रहा है, अपने को बिल्कुल नहीं देखते हैं, दूसरों को देखने में लगे हुए, तो क्या होता है, प्योरिटी की पावर डाउन होते होते इम्प्योरिटी खींचने लगती है। कोई भी हो, समर्पित हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, सबके साथ ये इक्वली होगा, और फिर इससे वो इम्प्योरिटी जागृत होके उन्हें दुखी करने लगते, उन्हें पता नहीं चलता है क्यों हो रहा, हम तो पवित्र थे, हम तो पवित्र हैं, हमें तो कोई शादी करने की इच्छा नहीं है, हम तो संसार में जाना नहीं चाहते, पर संसार के बारे में सोचते तो बहुत हैं, जाना तो नहीं चाहते,
ये भी चेक करना और चेंज करना जरूरी है। जी जी दत्ता जी, आपने प्रारंभ में कहा था हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो 4 घंटे रोज योग हो, अब जिसका योग ही नहीं लगता है बेचारे बैठते भी हैं, एकाग्रता नहीं होती, अब ये वाली भी बात है कि लंबे समय से ज्ञान में आप किसी को कह भी नहीं सकते कि हमारा योग नहीं लगता, लेकिन ये भी फैक्ट है, आपसे तो मिलते होंगे लोग, कि मन एकाग्र नहीं होता, शांत नहीं होता, योग में बैठते हैं लेकिन फॉर द नेम सेक, तो अब ऐसी स्थिति यदि किसी की है तो पवित्रता के लिए योग भी जरूरी है, योग भी नहीं लग रहा है तो क्या करें?
नहीं, वो तो नहीं बताते, लेकिन मैं पूछता जरूर हूँ योग कितना है जी भाई जी, बस है, करते हैं बाबा को याद, ऐसे बोल देते हैं।
जी जी,
मैं समझ जाता हूँ कि बाबा बाबा ही करते हैं, बाकी कुछ आता नहीं है इनसे, क्योंकि योग एक डीप सब्जेक्ट है और वो बिना अनुभवों के जाना भी नहीं जा सकता। कोई कहे हमने तो समझ लिया ना राजयोग क्या है, जिनका योग कम लग रहा है वो 51 टाइम भी उठते ही और सोने से पहले लिखे मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, इसको योग में ही काउंट करेंगे। सारे दिन में 300 मान तो ले ले कोई भी, उसका अभ्यास करें, या जो सुनते हो हम उल्ली चिंतन भेजते हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, उसके लास्ट में आज का पुरुषार्थ बताते हैं, उसको 5-7-10 बार कर लिया जाए, तो इससे क्या होगा, एक ईश्वरीय सुख मिलेगा, एक रस भरेगा जीवन में, और जो बाह्य रस है वो कटने लगेंगे। इसको भी योग में जोड़ लें, 5 स्वरूपों का अभ्यास जरूर करें, 3 बार सवेरे 3 बार शाम में, कम से कम बता रहा हूं, एक फीलिंग हो जाए हम ये थे, इसको भी योग में जोड़ें। किसका योग नहीं लगता, जो योग कक्ष हैं जिन्हें हम बाबा का रूम कहते हैं, उसमें जाके बैठ जाएं, सामने बाबा के चित्र को देख के बाबा से बातें करें, वहां बैठ के अभ्यास करें, ऊपर से शिव बाबा की किरणें आ रही हैं, 1-1 मिनट कर लें लंबा समय नहीं, इसको भी योग में गिनेंगे, रूढ़िहान करें, बातें करें उससे और किरणें लें, और कभी यहाँ रहते हुए मैं फरिश्ता हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, ये सब अभ्यास करते रहें, ये सब अभ्यास भी आत्मा को बहुत बल देंगे, और धीरे 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 करते नहीं, सालों लगेंगे, अगर कोई इस अभ्यास को थोड़ा सा दृढ़ता पूर्वक कर ले तो 1-2-3 मास में ही योग के अच्छे अनुभव होंगे। फिर बैठकर 10-10 मिनट योग कर लें, 4 बार बैठ जाएं 10-10 मिनट
जी,
और फिर योग का रस बढ़ेगा और ये समस्या समाप्त हो जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल, अभी योग तक पहुंचे हैं राधा जी, तो चाहेंगे अंत में आप जरूर, पांच स्वरूपों की बात आप हमेशा कहते हैं और ये हमारा एक पवित्र स्वरूप है, तो संक्षेप में कैसे उस अभ्यास को सारे दिन में कई बार किया जा सकता है, मैं चाहूंगा प्रैक्टिकली हमारे सभी भाई बहनों को अभ्यास कराएं।
चलें सभी, क्योंकि अभ्यास बाबा ने क्लासेज में भी कराए हैं, बड़ी बड़ी सभाओं के बीच 20-25 हजार की सभाओं में, और मुझे ये प्रिय इसलिए है कि मुझे ये हार्ट टचिंग रहा सदैव, जब जब बाबा ने बोला और मैंने इसको अभ्यास में लाया और कराया, लोगों से कमेंट्री भी इस पर हैं। चले अब हम एक एक मिनट में पांचों स्वरूपों का अनुभव कर लेते हैं। विजुअलाइज करें अपने को मस्तक के बीच चमकती हुई मस्तक मणि, मैं परम पवित्र हूं, मेरे चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल है। देखें अपने चारों ओर प्योरिटी की लाइट, ओरिजिनली मैं संपूर्ण पवित्र। सुंदर संकल्प देंगे अपने को, मैं हूं, मैं इस देह से न्यारी हूं, इस देह की और कर्म इंद्रियों की मालिक हूं, फील करें मुझसे निकली हुई पवित्र किरणें पूरे ब्रेन में फैल रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं। देखें अपने देव स्वरूप को दिव्य नेत्र से, परम धाम से जब मैं आत्मा नीचे उतरी तो इस देव स्वरूप में थी, कंचन काया, सिर पर डबल ताज था, मैं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थी, प्रकृति की मालिक थी, बहुत डिवाइन थी, मैंने 21 जन्म इस दिव्य स्वरूप में लिए, वो प्योरिटी वो देवत्व मेरे अंदर विद्यमान है, छुपा हुआ है। आ गई मैं नीचे अपने पूज्य स्वरूप में, हम तो नीचे आ गए लेकिन हमारे मान पूज्य स्वरूप की पूजा होने लगी। अपने को देखें, मैं इष्ट देवी हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ, या महावीर हनुमान हूँ, या विष्णु स्वरूप हूँ, मंदिर में हूं, कितने पवित्र भाव से भक्त मुझे निहार रहे हैं, गुणगान करते हैं, मुझसे जैसे पवित्र वाइब्रेशन सबको मिल रहे हैं, पापी और क्रिमिनल्स भी मेरे सामने आते ही शुद्ध हो जाते हैं, मैं ब्राह्मण हूं, पवित्रता के द्वारा श्रृंगारित हूं, भगवान ने मुझे प्योरिटी का वरदान दिया है, मैं बहुत भाग्यवान, पवित्रता की लाइट सबको देने वाली आत्मा, परमपिता के बहुत समीप हूँ, उसकी राइट हैंड हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, आत्मा चमकती हुई प्रकाश के शरीर में बैठी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, संसार के आकर्षणों से मुक्त हूँ, ईश्वरीय रसों से भरपूर हूँ, संसार को पावन करने के लिए अवतरित हुआ हूँ, अंग अंग से प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी, सभी भाई बहनों की ओर से जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से सभी को पवित्रता के लिए बहुत ही गहन और ठोस बातें प्राप्त हुई हैं और बस अब उसे अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस में लाने की आवश्यकता है कि अभ्यास कितने हमें सहज पवित्र स्वरूप की अनुभूति कराते हैं। थोड़ी देर में ही हम सब ने अनुभव कर लिया। सचमुच बाबा भी हमसे यही चाहते हैं कि हम सुंदर योग के अभ्यास के द्वारा, ज्ञान के बल के द्वारा अपने इस धारणा को मजबूत करते चलें, क्योंकि यदि आप शास्त्रों की ओर देखें, संसार की ओर देखें, तो सचमुच पवित्रता एक ऐसी सुंदर धारणा रही है हमेशा से ही, जिसका गायन वंदन पूजन होता रहा है। कन्याओं की भी पूजा, नवरात्रि का समय चल रहा है इसीलिए किया जाता है, क्योंकि वो पवित्र हैं, पैर छूते हैं सभी उनके, कोई उन्हें अपने पैर नहीं छूने देता। लेकिन विवाह के पश्चात जैसे ही ब्रह्मचर्य का खंडन होता है, वैसे ही वो सबके पैर छूने लगती है। संन्यास धर्म में भी आप देखें, सन्यासी पावन है इसीलिए सब उनके पैर छूते हैं। तो जहाँ कहीं भी हम देखें, शास्त्रों की ओर देखते हैं, तो इसकी तो अथाह गायन की गई है कि ब्रह्मचर्य से ही देवताओं ने मृत्यु पर जीत प्राप्त की। जो ब्रह्मचर्य एक धारणा है, यदि वो व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है तो चारों वेदों का जैसे फल प्राप्त हो जाता है। जब इतनी महत्ता है, इतनी विशेषता है, तो क्यों ना, और परमात्मा तो हमें आते ही ये बात कह चुके कि ये एक सुंदर धारणा अपने जीवन में लाओ, तभी संसार स्वर्ग बनेगा, तुम्हारा भी जीवन स्वर्ग बनेगा। तो हमें अपने भी जीवन को स्वर्ग बनाना है, संसार को भी स्वर्ग बनाना है, इसलिए बहुत दृढ़ता से इस सुंदर धारणा को अपने जीवन में लाते चलना है। भले ही तूफान आए, लेकिन ईश्वर हमारे साथ है। तो ईश्वर साथ है तो डरने की फिर क्या बात है। अंत में जैसे भ्राता जी ने कहा कि योग की बहुत सुंदर सुंदर विधियां बताई हैं, अगले मास जब हम मिलेंगे तो योग की अन्य सूक्ष्म और गुह्य विधियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि योग ही इन धारणाओं को भी जीवन में बहुत सहज और सरल कर देता है। दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जीवन सुखद और मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।